بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منشیہ بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واستوک نمازیوں کے کہ جو سدیو نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں، اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बुधवार है, नवंबर की 10, रबीउ सानी की 4 और आबान माह की 19 तारीख। एक घंटे तक चलने वाली सभा का आरंभ हम विगत की ही भांति विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद आप कार्यक्रम सुनेंगे अनमोल बातें। अनमोल बातों के उपरांत राजनीतिक चर्चा की जाएगी। राजनीतिक चर्चा के पश्चात आप हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे शौर्य गाथा और आजकल। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रमों को अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। अगर इस बारे में आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं को आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान किए बिना परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी संभव नहीं। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा की उच्च परिषद के सचिव ने अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के बारे में चेतावनी दी है। एक इसराइली सैनिक के लापता हो जाने के बाद व्यापक स्तर पर खोज अभियान आरंभ हो गया है। यूएई के विदेश मंत्री की सीरिया यात्रा पर अमेरिका ने अपनी अप्रसन्नता जताई है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान का कहना है कि परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी का मार्ग बिल्कुल ही स्पष्ट है। ये ज्यादा से ज्यादा दबाव की नीति को छोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान किए बिना हासिल नहीं हो सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने ट्वीट किया कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह दावा किया है कि ईरान ने परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है। क्या उन्हें नहीं मालूम कि परमाणु समझौते से बाहर निकलने वाला अमेरिका था? उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी का रास्ता बिल्कुल ही स्पष्ट है और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की नीति में अपनी पराजय को स्वीकार करे और इस बात को का विश्वास दिलाए कि अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ज्ञात रहे कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सीएनएन के साथ अपने इंटरव्यू में यह दावा किया था कि अमेरिका परमाणु समझौते में वापसी के लिए तैयार है, किंतु तेहरान इस बारे में क्षमा कीजिएगा लेकिन तेहरान इस बारे में आशंका में ग्रस्त है।
ईरान की राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा के सचिव ने अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के बारे में चेतावनी दी है। अली शमखानी ने बुधवार को भारत की राजधानी नई दिल्ली में क्षेत्रीय सुरक्षा की तीसरी बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान के संदर्भ में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे क्षेत्र में विस्तारवादियों की नीतियों को आगे बढ़ाने की भूमिका बन सकती हैं। अली शमखानी के अनुसार एक ओर तो अफगानिस्तान में दाएश और तकफीरियों सहित आतंकी गुटों की उपस्थिति में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर वहां पर सांप्रदायिक हिंसा के फैलने का डर है। इन बातों ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों और उसके गैर पड़ोसियों सबको चिंता में डाल दिया है। ईरान की राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा परिषद के सचिव ने कहा कि तेहरान अफगानिस्तान के वर्तमान तीन महत्वपूर्ण बातों से बहुत चिंतित है। एक तो कुछ देशों द्वारा अफगानिस्तान में तकफीरी आतंकवादियों को पहुंचवाना, वहां पर बढ़ती हुई निर्धनता और मानवीय संकट। उन्होंने बताया कि इस्लामी गणतंत्र ईरान 30 लाख से अधिक अफगानियों को शरण दिए हुए हैं। अली शाम खानी का कहना था कि इन पर होने वाले खर्च में से 96% स्वयं ईरान वहन कर रहा है।
तालिबान की अंतरिम सरकार के प्रवक्ता ने भारत में अफगानिस्तान के संबंध में आयोजित बैठक का स्वागत किया है। समागानी ने बुधवार को कहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान के बारे में होने वाली बैठक का हम स्वागत करते हैं जिसमें पड़ोसी देश भाग ले रहे हैं। उनका कहना था कि इस प्रकार की बैठक अफगानिस्तान और क्षेत्र के हित में है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पड़ोसी और क्षेत्रीय देश इस बात पर एकमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति की स्थापना होनी चाहिए। याद रहे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान की स्थिति को सुधारने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में रूस और ईरान सहित 7 देशों ने भाग लिया।
ज़ायोनी संचार माध्यमों ने एक इसराइली सैनिक के लापता होने की सूचना दी है जिसको ढूंढने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान आरम्भ कर दिया गया है। फास्ट न्यूज एजेंसी ने ज़ायोनी संचार माध्यमों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि बुधवार 10 नवंबर 2021 को एक इसराइली सैनिक अल अरबा नामक क्षेत्र से गायब हो गया। अल मयादिन वेबसाइट ने इसराइली सैनिक के लापता हो जाने की खबर देने के साथ बताया है कि उसका नाम माउर यरूशलमी था। ये ज़ायोनी सैनिक जिस छावनी में था वहां से निकलने के बाद गायब हो गया। इस इसराइली सैनिक को अंतिम बार इलात नामक क्षेत्र में देखा गया था। ज़ायोनी संचार माध्यमों के अनुसार इसराइल के पुलिस और सुरक्षा बल दोनों ही इस सैनिक की खोज में जुट गए हैं। इस बारे में अभी विस्तार से कुछ पता नहीं चल पाया है। यदिउत अहरनोत समाचार पत्र के एक पत्रकार ने इस बारे में बताया है कि ये इसराइली सैनिक मंगलवार की शाम को अल अरबा क्षेत्र में मौजूद था और बाद में उसे इलात नामक क्षेत्र में देखा गया। अरबा नामक क्षेत्र डेड सी के दक्षिण में स्थित है जो इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, कनाडा और इसराइल को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उनके विरोध के बावजूद इसराइल के खिलाफ एक एक करके 6 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की 4th कमेटी ने इसराइल के खिलाफ 6 प्रस्ताव मंजूर किए हैं। इन प्रस्तावों में अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में अतिग्रहणकारी ज़ायोनी शासन की ओर से योजनाबद्ध ढंग से अंजाम पाने वाले मानवाधिकारों के हनन, फिलिस्तीनी नागरिकों विशेषकर गजा पट्टी के निवासियों के खिलाफ शक्ति के प्रयोग और बैतुल मुकद्दस तथा गोलान हाइट्स सहित अतिग्रहित क्षेत्रों में कॉलोनियों के निर्माण की निंदा की गई। इसी तरह इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की स्वदेश वापसी पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। सीरिया के गोलान हाइट्स के हवाले से मंजूर किए गए प्रस्ताव में इसराइल से ये मांग की गई है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के अनुसार अमल करते हुए इस क्षेत्र में अपनी गैर कानूनी गतिविधियां बंद करे। संयुक्त राष्ट्र संघ की 4th समिति की बैठक में इसराइल के विरुद्ध उक्त 6 प्रस्ताव पारित होने के बाद ईरान के प्रतिनिधि ने फिलिस्तीन के बारे में ईरान के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा, एक बार फिर विश्व समुदाय ने फिलिस्तीन के बारे में अपने समर्थन का ऐलान करते हुए इसराइल को अपनी आपराधिक कार्रवाइयों का जवाबदेह बना दिया है।
सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने सोमवार की रात इसराइली युद्धक विमानों द्वारा फायर किए गए 6 मिसाइलों को तबाह और इंटरसेप्ट कर दिया था। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने मंगलवार की रात रिपोर्ट दी कि सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ब्यूक M2 और पेंसिर S ने होम शहर पर इसराइल के युद्धक विमानों द्वारा फायर किए गए 6 मिसाइलों को तबाह और इंटरसेप्ट कर लिया था। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार की रात ऐलान किया था कि लगभग शाम 7:16 पर उत्तरी बेरूत से इसराइली दुश्मन ने देश के कुछ क्षेत्रों पर हमले किए। सोमवार की रात लेबनान की सीमा से लगने वाले सीरिया इलाके पर इसराइल के हवाई हमले से 2 सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहीं इस हमले में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने बल दिया कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल हमलों का मुकाबला किया। इस हमले में 2 सैनिक घायल हो गए जबकि माली नुकसान भी हुआ।
संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री की सीरिया यात्रा से अमरीका बहुत नाराज है। अमरीका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यूएई के विदेश मंत्री की सीरिया यात्रा के बारे में चिंता व्यक्त की है। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद के साथ संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री की मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेट प्राइस ने कहा कि इस भेंटवार्ता से जो संदेश गया है उसको लेकर अमरीका चिंतित है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि बशार असद के साथ संबंध सामान्य करने का अमरीकी सरकार समर्थन नहीं करेगी। याद रहे कि यूएई के विदेश मंत्री ने 10 वर्षों के बाद पहली बार मंगलवार को सीरिया का दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद के साथ मुलाकात की थी।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि आधे से अधिक अमरीकी ये मानते हैं कि बाइडेन देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमेरिका में 2022 के मध्यावधि चुनाव से पहले एक पोल में सामने आया है कि 58% अमरीकी नागरिक मानते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन देश के सबसे अहम मुद्दों पर जरूरत के अनुसार ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जानकारी CNN के एक पोल में सामने आई है जो ये बताती है कि बाइडेन की लोकप्रियता में खासी गिरावट आई है। पोल में हिस्सा लेने वाले लगभग 36% लोगों ने कहा है कि देश में समय सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था की है। इनमें से 72% लोगों का मानना है कि बाइडेन ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वहीं कोरोना वायरस महामारी को सबसे अहम मुद्दा बताने वाले 20% लोगों में से 79% का मानना है कि बाइडेन की प्राथमिकताएँ सही हैं। 17% लोगों ने कोरोना महामारी को अमरीका के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती बताया है। कुल मिलाकर 48% लोगों का कहना है कि बाइडेन अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। हालांकि 52% लोगों ने ये मानने से इनकार किया है कि 1 से 4 नवंबर के बीच होने वाले इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 36% लोगों ने बाइडेन के नेतृत्व के तरीके का कड़ाई से विरोध किया है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में यह कहा है कि उसने हमेशा ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नई दिल्ली की सहायता किसी को कर्जदार नहीं बनाती। वर्तमान अध्यक्ष मैक्सिको की अगुवाई में सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पालन के अंतर्गत आयोजित खुली बहस के दौरान भारत के विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि चाहे वो पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत के पड़ोसियों के साथ हो या अफ्रीकी भागीदारों के या अन्य विकासशील देशों के साथ, भारत उन्हें बेहतर और सशक्त बनाने में मदद करने के लिए मजबूत समर्थन का स्रोत बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा।
विवादित पीएम क्षमा कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल को फंड से 165 वेंटिलेटर्स दिए गए थे, लेकिन इसमें से सबके सब खराब पाए गए हैं। सूचना का अधिकार कानून के तहत प्राप्त की गई जानकारी के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जब इन वेंटिलेटर्स का टेस्ट किया गया तो ये सही नहीं पाए गए और इसके परिणाम स्वरूप इससे मरीजों को कोई फायदा नहीं हुआ। अस्पताल ने कहा कि इसमें ज्यादातर डिवाइस जरूरी मानक पर खरे नहीं उतरे थे और ये वेंटिलेटर अचानक से बंद हो जा रहे थे, जो मरीजों का जीवन खतरे में डालने के समान है। और इसी के साथ रेडियो थेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अनमोल बातें।
श्रोताओ, कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। मोहम्मद महदी का सलाम स्वीकार कीजिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही पैगम्बरी पर नियुक्त हुए, उसी समय से आपने बहुआयामी अभियान व आंदोलन आरंभ किया और 23 साल तक उस कठिन अभियान को जारी रखा। ऐसे लोगों को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए आंदोलन चलाना, जिन्हें सत्य की पहचान न थी और माहौल पूरी तरह अंधकारमय था, जिसके बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, गुमराही अड़ियल व बिगड़े हुए ऊंट की तरह लात मारती, अपने खुरों से कुचलती और उन्हीं खुरों पर खड़ी थी। हर ओर से गुमराही लोगों को दबा रही थी। सांसारिक मोह माया, भोग अभिलाष, अत्याचार और बुराइयों में लोग डूबे हुए थे। शक्तिशाली वर्ग बिना रोक टोक के कमजोरों को दबा रहा था। ये अत्याचार सिर्फ मक्के और अरब प्रायद्वीप में ही नहीं था, बल्कि तत्कालीन श्रेष्ठ सभ्यताओं अर्थात विशाल रोमी साम्राज्य और ईरानी बादशाहत में भी व्याप्त था। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि किस तरह इंसान का पूरा जीवन अत्याचार में डूबा हुआ था। पैगम्बर इस्लाम ने पैगम्बरी पर नियुक्त होते ही इन बड़ी ताकतों के खिलाफ संघर्ष आरंभ कर दिया। ईश्वरीय संदेश वही स्वच्छ सोते की भांति पैगम्बर इस्लाम के हृदय पर उतरता और उन्हें उससे ताकत मिलती थी। उन्होंने दुनिया को महाबदलाव की ओर ले जाने के लिए पूरी क्षमता लगा दी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री के बयान की, जो उन्होंने ईरान के संबंध में दिया है। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी के भारत दौरे पर भी एक नजर डालेंगे। तो आज के कार्यक्रम में यही दो विषय शामिल है। आरंभ करते हैं अमरीकी विदेश मंत्री के बयान से। अमेरिका के विदेश मंत्री ने अपने ताज़ा बयान में इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन में अपने मिस्री समकक्ष से मुलाकात में एक बार फिर तेहरान के खिलाफ अमेरिका के शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोणों की पुनरावृत्ति की है। एंटनी ब्लिंकन ने किसी प्रकार का प्रमाण पेश किए बिना दावा किया कि तेहरान द्वारा आतंकवाद का समर्थन, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और तेहरान द्वारा अमेरिका सहित विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के संबंध में गंभीर चिंता मौजूद है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ईरान के खिलाफ निराधार दावों का क्रम इस्लामी क्रांति की सफलता से आरम्भ हुआ है, जो अब तक जारी है और कब तक जारी रहेगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्ष 2015 में गुट 5 धन 1 के सदस्य देशों के मध्य परमाणु समझौता हुआ था और 8 मई 2018 को एक पक्षीय रूप से अमेरिका इस समझौते से निकल गया।
اس کے بعد ٹرمپ سرکار نے ایران کے خلاف ادھکتم دباؤ کی نیتی اپنائی اور اس نے تہران کے ورودھ کڑا سے کڑا پرتیبندھ لگا دیا۔ امریکی ادھیکاریوں کا وچار تھا کہ ادھکتم دباؤ کی نیتی کے سامنے ایران گھٹنے ٹیک دے گا اور ان کی اتارکک مانگ کو ماننے کے لیے وش ہو جائے گا، پرنتو امریکہ کے پرمانو سمجھوتے سے نکلے ہوئے لگ بھگ 3 سال کا سمے ہو رہا ہے اور ایران نے امریکہ اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے دیشوں و شاسنوں کی کسی بھی اتارکک مانگ کو سویکار نہیں کیا ہے۔ امریکہ اور اس کے پچھلگو پرمانو سمجھوتے میں ان وشیوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جن کا پرمانو سمجھوتے سے کوئی سمبندھ نہیں ہے۔ دوسرے شبدوں میں امریکہ اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے دیشوں و سرکاروں کا پریاس پرمانو سمجھوتے کی پرگتی کے مارگ میں بادھا بنا ہوا ہے۔ یہی نہیں، پرمانو سمجھوتے کی جو حالت ہے اس کے لیے امریکہ اور یوروپی دیشوں کے کریا کلاپ ذمہ دار ہیں۔ ان دیشوں نے نہ کیول پرمانو سمجھوتے میں اپنے وچنوں پر عمل نہیں کیا ہے بلکہ پروکش روپ سے ان دیشوں کو دنڈت کرنے کی دھمکی بھی دی ہے جو اس سمجھوتے پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ پرمانو سمجھوتے سے امریکہ کے نکلنے کا مکھ بہانہ بھی یہی وشے تھا اور ٹرمپ سرکار کا کہنا تھا کہ پرمانو سمجھوتے میں ایران کا میزائل کاریکرم شامل نہیں ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن کی سرکار کے ستا میں آ جانے کے بعد بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پرمانو سمجھوتے میں واپس آ جائیں گے، پرنتو آج تک ان کی سرکار نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جو اس بات کا سوچک ہو کہ بائیڈن پرمانو سمجھوتے میں واپسی کے پرتی گمبھیر ہیں۔ وینا میں پرمانو وارتا کے اب تک 6 دور ہو چکے ہیں اور بائیڈن سرکار نہ تو پرتیبندھوں کو سماپت کر رہی ہے اور نہ ہی پرمانو سمجھوتے میں واپس آ رہی ہے۔ اسی پرکار وہ ایران کے خلاف دباؤ اور پرتیبندھ کی نیتی کے جاری رہنے پر آگرہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے وینا وارتا کا کوئی وشیش پریڑام نہیں نکلا ہے۔ ایران کے اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا نے ابھی کچھ سمے پہلے کہا تھا کہ امریکی زبان سے کہتے ہیں کہ پرتیبندھوں کو سماپت کر دیں گے، پرنتو انہوں نے نہ تو پرتیبندھوں کو سماپت کیا ہے اور نہ ہی کریں گے، ساتھ ہی شرط بھی لگاتے اور کہتے ہیں کہ سمجھوتے میں ایک واقعہ شامل کیا جانا چاہیے کہ بعد میں کچھ وشیوں کے بارے میں چرچا کی جائے گی ورنہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بہرحال ایران کے اپ ودیش منتری علی باقری کنی نے بل دے کر کہا ہے کہ ایران کی رکشا کھمتا کا سمبندھ راشٹریہ ہتوں اور راشٹریہ سرکشا سے ہے، اس آدھار پر کسی بھی دیش کو اس سمبندھ میں کچھ کہنے یا دشکون اپنانے کا ادھیکار نہیں ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کارکرم راجنیتک چرچا۔
اسلامی گڑتنتر ایران کی سروچ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو علی شمخانی بھارت کی یاترا پر نئی دلی پہنچے جہاں انہوں نے کھیتریہ سرکشا کے وشے پر ہونے والی بیٹھک میں بھاگ لیا۔ بیورا پیش کر رہے ہیں دلی سے ہمارے سنواددتا شمشاد کاظمی۔
کھیتریہ سرکشا وارتا شیرشک کے انترگت دلی میں کھیتریہ سرکشا سلاحکاروں کی آج بیٹھک ہوئی جس میں افغانستان کے پریپریکش میں کھیتر کی سرکشا کی ورتمان استھتی کی سمیکشا کی گئی۔ اس وارتا میں جس کی ادھیکشتا بھارت کے راشٹریہ سرکشا سلاحکار اجیت ڈوبھال نے کی، ایران اور روس سہت مدھیہ ایشیا کے 6 دیشوں کے راشٹریہ سرکشا کے سلاحکاروں اور سچیووں نے بھاگ لیا۔ بھارت کے راشٹریہ سرکشا سلاحکار اجیت ڈوبھال نے کہا کہ افغانستان کی ورتمان استھتی کیول افغانستان کی جنتا کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے کھیتر اور پڑوسی دیشوں کی جنتا کے لیے بھی مہتوپورن ہے۔ انہوں نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ یہ سمے افغانستان کی استھتی پر کھیتریے دیشوں کے بیچ ادھک سمنوے استھاپت کرنے سہیوگ اور نکٹ صلاح مشورے کا ہے۔ اسلامک گڑتنتر ایران کی اچ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو علی شمخانی نے اس وارتا کو مہتوپورن ایوم لابھدائک بتایا اور کہا کہ اس سندرب میں تہران میں آیوجت پچھلی دو چرنوں کی وارتا میں ہم نے آتنکواد کا مقابلہ کرنے سے لے کر افغانستان کی ورتمان استھتی کی سمیکشا کی تھی اور ان بیٹھکوں میں اس بات پر عام سہمتی بنی تھی کہ افغانستان میں شانتی ایوم سرکشا کی برقراری کھیتر کے سبھی دیشوں کے سنیکت ہت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جنتا کے سبھی ورگوں ایوم سمودایوں پر آدھارت سرکار کی استھاپنا ہی اس دیش کی سمسیاؤں کا سمادھان ہے۔ علی شمخانی نے امریکہ اور پشمی دیشوں دوارا افغانستان کو کھتی پہنچائے جانے کا الیک کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے آتنکواد کا مقابلہ کرنے کے بہانے افغانستان پر قبضہ کیا اور نردوش افغان جنتا کی ہتیا کی اور اب وہ ایسی استھتی میں وہاں سے نکلنے پر وفش ہوا ہے جب افغانستان کی استھتی دینی ہے۔
امیدوار ہستیم بتوانیم ایک تصویر درستی از 20 سال اقدامات۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ کر کے افغانستان میں شانتی بحالی کا پریاس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے افغان جنتا کی سہایتا اور مانویہ سنکٹ کا مقابلہ کرنے ہیتو اپنے سنسادھنوں کو پریوگ میں لانے کو تیار ہے۔ اس بیٹھک میں بھارت اور ایران کے اترکت قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ترکمانیہ اور ازبکستان کے راشٹریہ سرکشا صلاح کاروں اور سچیووں نے بھی بھاگ لیا۔ اس بیٹھک کے سماپن پر دلی گھوشنا پتر جاری ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی دھرتی کو آتنکواد کے پرشکشن پناہ گاہ اور دھن اپلبدھ کرانے کے لیے پریوگ نہیں ہونے دیا جائے گا اور افغانستان کی سمسیا کا سمادھان یہی ہے کہ وہاں سبھی سمودایوں کے پرتندھتو والی سرکار ستا کی باگ ڈور سنبھالے۔ ایران کی سروچ راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو علی شمخانی نے اسی پرکار اپنے بھارتیہ سمکش اجیت ڈوبھال سے بھی دوپکشی بھیٹ کی جس میں دوپکشی کھیتری ایوم انتراشٹری مدوں پر وچار ومرش کیا گیا۔ علی شمخانی اس وارتا میں بھاگ لینے کے لیے کل رات دلی پہنچے تھے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کارکرم سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، اب پرستت ہے ساپتاہک کارکرم شوریہ گاتھا، جس کے بعد آپ سنیں گے سبھا کا انتم کارکرم آج کل۔ شوریہ گاتھا۔
دوستو، کارکرم شوریہ گاتھا کے ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ آج کے ایک پروگرام میں فاؤ پرائے دویپ کے ہاتھ سے نکلنے کے بارے میں چرچا کریں گے۔ مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام شوریہ گاتھا میں 80 کے دشک میں ایران پر عراق کے باسی صدام شاسن کے حملے کے مقابلے میں ایرانی راشٹر کے پوتر پرترکشا اور اس دوران ایرانی راشٹر کے ویر سپوتوں کے شور کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ پچھلے کارکرم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فاؤ پرائے دویپ کس طرح ایرانی فورسز کے ہاتھ سے نکل گیا۔
फाओ के पतन के कारण को अगर एक जुमले में कहना चाहें तो ये कहा जाएगा कि इराक की बासी सेना का मानव बल और सैन्य साजो सामान की नज़र से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना, साथ में पूरब और पश्चिम की दो बड़ी शक्तियों की ओर से बहुआयामी समर्थन मिलना और इराकी सेना की रणनीति में रक्षात्मक रूप से आक्रामक रूप में बदलाव था।
ईरानी कमांडर सद्दाम शासन के अपने फौजियों को तादाद और सैन्य साजो सामान से मजबूत बनाने की कोशिशों से अवगत थे, लेकिन जरूरी सैन्य ऑपरेशन की वजह से ईरानी सेना के एक भाग को पश्चिमोत्तर में तैनात करना पड़ा। IRGC फोर्स के तत्कालीन कमांडर मोहसिन रजाई ने जब जंग खत्म होने में कुछ महीने बचे थे तो कहा था, मौजूदा स्थिति में जब रंगरूट की कमी है, बजट की मुश्किल, IRGC की डिफेंस लाइन की बुरी तरह नाकामी, सिपाह की जिम्मेदारियों का उसके संगठनात्मक रूप के अनुकूल न होने और अन्य तत्वों के मद्देनजर डिफेंस लाइन के संतोषजनक हालत में पहुंचने में एक साल लगेगा और इस दौरान हम संभवतः 2 से 3 भारी नुकसान उठाएंगे।
फाओ के पतन की वजह से टीकाकार इस क्षेत्र में इराक की बासी सेना की श्रेष्ठता के कारणों की समीक्षा में लग गए। इराक की बासी सेना की अचानक हमले से कुछ पश्चिमी अधिकारी और टीकाकार हैरत में थे, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें लग रहा था कि इराक अपनी रक्षात्मक मुद्रा में ही रहेगा। रणनीति में हुए इस बदलाव से पता चला कि अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और फ्रांस सलाहकार के तौर पर नहीं बल्कि इराक के प्रेसिडेंशियल गार्ड को दोबारा संगठित कर रहे थे, जिनकी वजह से स्थिति में काफी बदलाव आया था।
इराक की बासी सेना का फाओ को फिर से अपने हाथ में लेना इस सेना के रणनीतिक पोजीशन के बेहतर होने का कारण बना। स्थिति के पैदा होने से नए विचार सामने आए, इस अर्थ में कि मौजूदा संतुलन में जिसमें ईरान आक्रामक मुद्रा में और इराक रक्षात्मक व कमजोर मुद्रा में था, बदलाव आए। इसी तरह पिछली सोच भी खत्म हो गई जिसमें इराकी सेना को जरूरी मनोबल व कौशल से खाली माना जा रहा था। इसी विचार के आधार पर इराक के प्रेसिडेंशियल गार्ड्स फोर्स के पूर्व कमांडर ने कहा था, फाओ शहर की आजादी से जंग का भविष्य बदल जाएगा।
इराक के रक्षात्मक मुद्रा से आक्रामक मुद्रा में आने के दृष्टिगत ईरान की सैन्य रणनीति में बदलाव लाने के लिए वक्त की जरूरत थी, ताकि वो बासी सेना के बाद एक हमले का मुकाबला कर सके। इसके अलावा फाओ के पतन से ईरान को मानसिक नजर से इतना भारी नुकसान पहुंचा जिसकी भरपाई आसानी से संभव नहीं थी। फाओ के पतन के बाद जंग के मैदान और राजनीतिक मंच पर आए बदलाव के दृष्टिगत जंग के मुख्य कमांडर श्री हाशमी रफसंजानी ने जंग की प्रतिक्रिया की समीक्षा में कहा था, अब आगे से वक्त हमारे हित में नहीं होगा।
भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के ईरान के मामलों में सलाहकार गैरी सिक का ईरान के रवैये में बदलाव और अमरीका के जंग को खत्म कराने के लिए तैयार होने के बारे में मानना था। अगर ईरान को लगेगा कि जंग का जारी रहना क्रांति के लक्ष्य और इस्लामी हुकूमत के बाकी रहने के लिए खतरनाक होगा तो वो किसी न किसी तरह इस हालत से निकलने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में जब इराकी सेना के ईरानी फोर्सेस के मोर्चों पर हमले जारी थे, ईरानी अधिकारियों के लिए सबसे अहम विषय इराकी सेना के हमले को रोकना था। इस बात की संभावना थी कि इराक जंग के आगाज की तरह फिर न हमले शुरू कर दे। दूसरी ओर ईरान सैन्य हार के दुष्परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश में था।
उस वक्त इस्लामी गणतंत्र ईरान के अधिकारियों के सामने ये बात जाहिर हो चुकी थी कि ईरान की सैन्य ताकत व आर्थिक क्षमता जंग को सैन्य मार्ग से खत्म कराने के लिए काफी नहीं है, बल्कि अगर राजनीतिक तरीके से इराक के सैन्य हमले को न रोका गया तो मुमकिन है इराक अपनी शर्तें ईरान पर थोप दे।
दूसरी ओर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम खत में लिखा था कि हम जंग का खर्च देने की पोजीशन में नहीं हैं। IRGC के कमांडर ने भी इमाम खुमैनी के नाम खत में लिखा था। अब जबकि अमेरिका सामने आ गया है, अगर जंग को जारी रखना है तो बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत है। IRGC के कमांडर का खत देश के अधिकारियों के लिए दस्तावेज साबित हुआ कि उनकी जबान से जो जंग को निर्णायक जीत तक जारी रखना चाहते थे, जंग के मोर्चे की वास्तविकता को इमाम खुमैनी के सामने पेश करें, जो सभी फोर्सेस के कमांडर थे। ऐसी सच्चाई को साफ तौर पर बयान करने के लिए फैसला लेने की जरूरत थी। बहरहाल उक्त खत बाकी खतों के साथ, जिसे तत्कालीन सरकार के अधिकारियों ने देश की आर्थिक व सामाजिक क्षमता के बारे में लिखा था, इमाम खुमैनी की सेवा में पहुंचाया गया।
इससे पहले अमेरिकी कुवैत के तेल टैंकरों को स्कार्ट करके और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 598 पारित करवाकर पहल को अपने हाथ में लेने और जंग को खत्म कराने की पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश में थे। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान का प्रतिरोध और उसके नियंत्रण में कब्जे वाले इलाके थे। इसी वरीयता की वजह से ईरान चाहता था कि सद्दाम शासन को हमलावर के तौर पर माना जाए, लेकिन अमेरिका इस मांग को मनवाने से पीछे हट गया। अमेरिकियों ने इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम की पूरी तरह मदद करने और मैका फाले प्रकरण के बाद ईरान पर लगातार दबाव बनाया।
फाओ के पतन से वास्तव में रास्ते में मौजूद रुकावटें कुछ हद तक कम हो गईं। इसी वजह से अमरीकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड मर्फी ने फाओ के पतन और जंग के खत्म होने की पृष्ठभूमि मुहैया होने की खुशी में कहा था, पिछले महीने फाओ प्रायद्वीप पर इराक की जीत से कूटनीतिक चैनल से आगे बढ़ने की नई संभावना पैदा होगी। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय व रणनीतिक अध्ययन सेंटर में प्रोफेसर शिरीन हंटर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से इंटरव्यू में अमेरिकी नीति के बारे में कहा था, मैकफार्लिन प्रकरण के बाद अमेरिका ने पूरी तरह इराक का पक्ष लेने की नीति अपनाई है। उस वक्त से अमेरिका की नीति ईरान पर लगातार दबाव बढ़ाने की ही रही है।
ईरान नए हालात में एक और जंग की प्रक्रिया और अमेरिका की हस्तक्षेपपूर्ण नीतियों की ओर से चिंतित था, तो दूसरी ओर जंग को खत्म कराने के लिए इस सच्चाई को पहचानवाने की कोशिश में था कि इराक मुख्य रूप से हमलावर था और ईरान हमले का शिकार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हलकों को इस सच्चाई को पहचानवाना ईरान के लिए बहुत अहम था, लेकिन अमेरिकी रणनीतिक कारों की नज़र में ऐसी किसी स्थिति का पैदा होना जिससे इराक की सरकार का पतन हो, फारस की खाड़ी में संतुलन बिगड़ जाएगा और क्षेत्र में अमेरिका के दोस्त व घटकों के लिए खतरा होगा, जिसके नतीजे में पश्चिम के रणनीतिक हित खतरे में पड़ जाएंगे।
फाओ के पतन और जंग के मैदान में ईरान की वरीयता के हाथ से जाने के नतीजे में सद्दाम शासन को हमलावर के तौर पर पहचानवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के राजनीतिक हालात भी बदल गए। सैन्य व राजनीतिक मंच पर नई घटनाओं के मद्देनजर श्री हाशमी रफसंजानी ने इतालवी टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा था, अगर हमें लगेगा कि सुलह करना बेहतर है तो हम इस नीति को कबूल करेंगे।
ईरान के राजनीतिक व जंग के मैदान के बदलते हालात और जंग जारी रखने के लिए आर्थिक मुश्किलों के दृष्टिगत इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सैन्य मार्ग जंग की मुश्किल के हल का मुनासिब रास्ता नहीं है। इसी वजह से देश व क्रांति के हितों की रक्षा के लिए UN सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नंबर 598 स्वीकार कर लिया।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में इस्लामी गणतंत्र ईरान की ओर से प्रस्ताव 598 कबूल किए जाने और ईरान की रक्षा पंक्ति पर इराक की वासी सेना के बड़े पैमाने पर हमले के बारे में बता देंगे।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم۔ آج کل
دوستو، کارکرم آج کل کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
اویدھ زائلی شاسن آئے دن فلسطینیوں پر حملے کرتا رہتا ہے۔ پچھلے کئی دشکوں سے وہ فلسطینیوں کے ورودھ ہنسک کاروائیاں کرتا آ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس اویدھ شاسن نے دعویٰ کیا کہ وہ اسلامی گڑتنت ایران کے ورودھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسروں پر حملے کا دعویٰ کرنے والا یہ اویدھ شاسن اس سمے بہت سی ایسی سمسیاؤں میں گھرا ہوا ہے جن کے بارے میں کم ہی چرچا کی جاتی ہے۔
اس شاسن کی پرمکھ سمسیاؤں میں سے ایک وہاں کی جن سنکھیا سمبندھی سمسیا ہے۔ اس اویدھ زائونی شاسن کے گٹھن کے سمے سے یہودیوں کو سنہرے سپنے دکھا کر وشو کے وبھن کونوں سے اسرائیل لایا گیا۔ اس کام کو اسرائیل کے ادھیکاریوں نے اپنی سوچی میں سروپری رکھا۔ کچھ سمے تک اسرائیل میں رہنے کے بعد انیہ استھانوں سے آنے والے یہودیوں کو وہاں پائی جانے والی سمسیاؤں کا پتہ چلا۔ جب اسرائیل کی حقیقت ان یہودیوں کے سامنے آئی تو انہوں نے یہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔
اب حال یہ ہے کہ اسرائیل آنے والے یہودیوں کی تلنا میں اسرائیل سے واپس جانے والے یہودیوں کی سنکھیا بہت ادھک ہو گئی ہے۔ سن 2009 میں زائونی شاسن کے پلائن کیندر کی اور سے جانے والی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں یہودی یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ اسرائیلی سنگٹھنوں کی اور سے کرائے جانے والے ایک نئے سروے میں یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل سے انیہ دیشوں کی اور یہودیوں کا پلائن بڑھ رہا ہے۔
اسرائیلی سنستھا میڈگام نے اپنے حالیہ سروے کے پریناموں کی گھوشنا کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیل سے انیہ دیشوں کی اور یہودیوں کے پلائن کی سنکھیا ورش 2000 سے 2011 کے بیچ 1,48,000 رہی ہے، جس کا ارتھ یہ ہے کہ ہر سال اوسطاً 13,000 یہودیوں نے اسرائیل سے انیہ دیشوں کی اور پلائن کیا ہے۔ اس زائنی سنستھا نے کہا ہے کہ انیہ دیشوں سے اسرائیل آنے والے یہودیوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے۔ پلائن کرتاؤں کو اسرائیل لانے والی ایک زائنی سنستھا کے پرمکھ آوری کوہن نے بتایا کہ بہت سے یہودی اسرائیل چھوڑنے کے اچھک ہے کیونکہ وہ اسرائیل سے کسی پرکار کا جڑاؤ محسوس نہیں کرتے۔
آوری کوہن کہتے ہیں کہ ہمیں اس گمبھیر چنوتی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کوہن نے کہا کہ سروے کے پرینام اسرائیل میں پہچان کے گہرے سنکٹ کا پتہ دیتے ہیں اور اسرائیلی سماج میں گہری کھائی کو اجاگر کرتے ہیں۔ क्षेत्र में ज़ायोनी शासन की युद्धक नीतियां, यहूदियों से किए गए झूठे वादे और फिलिस्तीनी गुटों से ज़ायोनी शासन की निरंतर पराजय इसराइल से यहूदियों के उल्टे पलायन के मुख्य कारण माने जा रहे हैं।
अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की जनसंख्या संबंधी समस्या का एक कारण यह है कि वहां पर 1,000 से अधिक जातियां रहती हैं। ये वे लोग हैं जो संसार के अलग अलग क्षेत्रों से पलायन करके इसराइल आए हैं। ان میں سے کچھ ویسے تو یہودی نہیں ہیں، کنتو ان کے بہت سے سنسکار یہودیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ہزار سے ادھک جاتیوں کے رہنے کے کارن اسرائیل میں ان کے بیچ آئے دن ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیونی شاسن میں پہچان کا سنکٹ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا سنکٹ ہے جس میں زیونی ادھیکاریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔
दोस्तों, एक साथ अधिक जातियों की उपस्थिति के कारण इसराइल में जातीय हिंसा बढ़ी है, जिससे सामाजिक दूरियां में इजाफा हुआ है। इनका एक मुख्य कारण कुछ यहूदियों द्वारा स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ समझना है। इसराइल में रहने वाले यहूदियों में मूल रूप से तीन प्रकार की सामाजिक दूरियां पाई जाती हैं। पहली अरब और यहूदियों के बीच पाए जाने वाले ऐतिहासिक मतभेद, दूसरे यहूदियों के बीच जातीय मतभेद और तीसरे यहूदियों के बीच धर्म को लेकर मतभेद।
इसराइल में रहने वाले अरबों और यहूदियों के बीच अंतर का एक कारण उनकी पहचान को लेकर है। अपनी पहचान को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहुत ही गंभीर मतभेद पाया जाता है। इस मतभेद का एक कारण ज़ायोनियों की ओर से अरबों के साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार भी शामिल है, क्योंकि यहूदी स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में रहने वाले अरबों और यहूदियों के बीच हाल में होने वाली गंभीर झड़पों के बाद अमरीकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था कि इसराइल ने हालिया दिनों में गजा वासियों पर हमला करके इसराइल के भीतर ही तनाव पैदा कर दिया है। अब वहां पर पड़ोसियों को अपने पड़ोसी पर भरोसा नहीं रहा है और वे एक दूसरे के साथ हिंसक कार्रवाई पर ही उतर आते हैं। ये वे बातें हैं जो इसराइल में इससे पहले नहीं थीं।
इस संबंध में इसराइल के राजनीतिक मामलों के एक जानकार इलान ग्रिल सामिर ने फ्रांसीसी समाचार पत्र लोमोन में लिखा है कि यहूदियों ने सड़कों पर अरबों पर हमला किया, जिसके बाद झड़पें बढ़ गई। बाद में इसने हिंसक रूप धारण कर लिया और यह हिंसा बढ़कर पड़ोसियों तक पहुंची। इस प्रकार की हिंसा को इसराइल के अन्य नगरों में भी देखा जा सकता है। इस हिंसा में शांतिपूर्ण ढंग से रहने की संस्कृति को क्षति पहुंचाई गई। इसराइल में रहने वाले अरब समुदाय के बारे में वे कहते हैं कि अरब मूल के लोगों के मोहल्लों और क्षेत्र में आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी, निर्धनता और वहां पर मूलभूत ढांचे का सही न होना ऐसी बातें हैं जिन्होंने वर्तमान स्थिति को जन्म दिया है।
विशेष बात यह है कि यहूदियों के भीतर धर्म को लेकर भी गंभीर मतभेद पाए जाते हैं। यहूदी समाज में पाई जाने वाली खाई को इन चार समूहों में खोजा जा सकता है। सफारिक समुदाय, अश्किनजी समुदाय, रूसी यहूदी और इथोपियन यहूदी। अश्कनाजी यहूदियों को इसराइल में प्रथम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, जबकि सफारिक यहूदियों को दूसरे दर्जे का कथित नागरिक समझा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसराइल में सामाजिक मतभेद का एक कारण वहां पर विभिन्न जातियों का पाया जाना है। ये जातियां विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं की स्वामी हैं। यहूदियों के चारों गुटों में सेफरेड्रियम और अश्केनजी समुदाय अन्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावी हैं। वे यहूदी जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में दक्षिणी इटली से पलायन करके जर्मनी आए थे, उनको इसराइल में अश्केनजी यहूदी कहा जाता है।
वे यहूदी जो इस्लामी और अरब क्षेत्रों से पलायन करके इसराइल गए, उनको सेफरेड्रियम यहूदी कहा जाता है। धार्मिक किताब तलमूद को लेकर भाषा, उपासना के तरीके, पहनावे, निजी मामलों और धर्म के अन्य मामलों के संबंध में यहूदियों के इन दो गुटों में काफी अंतर पाया जाता है। लेकिन इसराइल में मौजूद मतभेदों का मुख्य कारण एक यहूदी गुट का अन्य पर वर्चस्व की भावना रखना है। इस सोच की वजह से वहां पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब इस भावना के साथ इसराइल के समाज में दूसरों के साथ व्यवहार किया जाएगा, तो निश्चित रूप में मतभेदों का गंभीर होना स्वाभाविक है।
इन मतभेदों के अतिरिक्त इसराइल के धार्मिक और सेक्युलर यहूदियों के बीच भी बहुत दूरियां मौजूद हैं। इस हिसाब से धर्म को मानने वाले केवल यहूदी धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही जीवन गुजारना चाहते हैं। इनके मुकाबले में सेक्युलर यहूदी हैं जो धर्म के पाबंद नहीं हैं, लेकिन वे ज़ायनिज्म में पक्का विश्वास रखते हैं। इसके बावजूद धर्म में पक्की आस्था रखने वाले यहूदियों ने सरकार से कई प्रकार की विशेषताएं हासिल कर रखी हैं, जिनमें से एक धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग से मुक्त किया गया है।
अवैध ज़ायनी शासन के गठन के 7 से अधिक दशक गुजर जाने के बावजूद वहाँ पर सामाजिक मतभेद और जातीय हिंसक कार्रवाइयाँ देखने में आती रहती हैं। ये इतनी अधिक हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसराइल के भीतर कराए गए शोध का परिणाम ये बताता है कि वहाँ पर पाए जाने वाले मतभेद घटने के बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसराइली कांग्रेस नामक संस्था के संयुक्त शोध के नतीजे बताते हैं कि 58% यहूदियों का मानना है कि वहां पर रहने वाले अरब मूल के लोगों को संचार माध्यमों में आजादी से बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त 8.5% यहूदी इसराइल में रहने वाले अरब मूल के निवासियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयां करने के लिए सदैव तैयार हैं। एक इसराइली धर्मगुरु ने कुछ समय पहले कहा था कि यहूदियों की जाति अरबों से बहुत बेहतर है, इसलिए अरबों को यहूदियों का दास होना चाहिए। इसराइल के कांग्रेस शोध परियोजनाओं के संस्थापक साहिर लेफ्शिस्तेस कहते हैं, ये परिणाम इसराइल में किसी प्रकार से लोग एक दूसरे के विरोधी हैं। वास्तव में ज़ायनी शासन की भेदभावपूर्ण व्यवस्था ही इसराइल के भीतर मतभेदों का मुख्य कारण है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अख्तर रिज़वी और मरियम मेहरदादी को इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुना आजकल। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य लिख भेजिए। अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.